आगे आए 37 से 40, दुश्मन के घर परवरिश, वो लही क्या है जो फिरौन से डर जाए। जिस बच्चे के पैदा होने से डर कर फिरौन ने हजारों बच्चे कत्ल करवा दिए, अल्लाह उस बच्चे को फिरौन के घर में ही ला रहा है। क्या पता चला कि हमेशा अल्लाह पे नज़रें लगाइए, और हज़रत मूसा पे जो एहसानात थे उसका तذکرہ है। ये सारा कुछ सूरह कसस में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, कैसे अल्लाह ने लोगों के दिलों में मूसा की मोहब्बत डाली थी, और इसी तरह बहन का रोल आपको इस आयत 40 में मिल रहा है, और इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम से एक जो कत्ले ख़ता हो गया था उसका तذکرہ है। यानी चंद आयतों में मूसा के बचपन से लेके मिस्र जाने तक की बात है। ये कुरान का एक खूबसूरत सा एजाज है कि थोड़े से लफ्ज़ों में बड़ी बड़ी बातें समझा देता है। फिर इसके बाद फिरौन के सामने दावते हक का जिक्र है, आयत 41 से 48, और आप नोट कर रहे हैं कि मूसा की सीरत है ये तरतीब के साथ, एक के बाद एक, एक के बाद। यानी अब यहाँ नबूवत जब मिल गई तो उसके बाद फिरौन के सामने आ गए, और इन आयात में भी बहुत खूबसूरत नुक्ते हैं दावत के, अल्लाह की तरफ बुलाने के तरीके, और ख़ास तौर पे वस्तनातुकली नफ्सी। अल्लाह कहते हैं मूसा मैंने आपको अपने लिए चुन लिया। अल्लाह तआला इंसानों को मुख्तलिफ इम्तिहानों से गुजार कर ख़ास रंग में ढाल कर अपने काम का बनाता है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात होते हैं बंदे को समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है, तो उसका जवाब है इसके अंदर। और फिर ये जो दूसरी नसीहत इसमें गुजरी, फ़कूला लहू कौलन लय्यिना, नरम बात करना। किससे बात करने जा रहे थे? माँ बाप से? नहीं। बीवी शोहर से बात नरमी से करे? बच्चे माँ बाप से? नहीं। फिरौन के पास जाते हुए भी नरमी से बात करनी है। आप देखिए कि वक्त के फिरौन यानी जाबिर बादशाह के सामने जब नरमी से बात करनी है तो फिर आपस में कैसे बात करनी चाहिए? हमारी ज़ुबानें कितनी कुन छुरियाँ बन जाती हैं तबलीग के नाम पे, इतनी ऊंची आवाज़ है कि कानों से ऊपर जाएगी, लोग कैसे समझेंगे आपकी बात? कभी कभी बच्चे डर जाते हैं मस्जिदों में, कहते हैं मामा मौलवी साहब को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तो हमेशा अपनी आवाज़ की पिच को इतना रखिए कि बात दिल में जाए। अब देखिए हल्की बारिश ज़मीन में जाती है, जरखेज़ी लाती है, और तेज़ बारिश ऊपर की जरखेज़ मट्टी को भी बहा लेती है, कि ऐसा ना कि हमारी टोन की वजह से लोग दीन से ऑफेंड हो जाएं, और सबसे बड़ी बात शायद कि नसीहत कबूल करें। यानी हमेशा गुंजाइश रखिए इस बात की कि अगला आपकी बात समझ जाए। फिर उसके बाद 49 से 60 में हज़रत मूसा और फिरौन के दरमियान एक मुकालमा है कि जिसमें उन्होंने उनको अल्लाह ताला की मुख्तलिफ शानें दिखाई, कायनात का इतना खूबसूरत निज़ाम दिखा रहा है कि तू रब नहीं हो सकता बल्कि रब कोई और है। फिर उसके बाद कहानी थोड़ी आगे जाती है तो 61 से 70 में जादूगरों का किरदार दिखाया जा रहा है। फिरौन ने खुद अपने सारे असबाब इख्तियार करके लोगों को बुलाया। इरादा क्या था? कि लोग मूसा को झूठा समझें। अल्लाह ने मूसा की सच्चाई पेश की। उस दौर में कोई मीडिया तो था नहीं, एडवर्टाइजमेंट कंपनियां तो थी नहीं, तो यहाँ अल्लाह के नबी की वो बात फिट होती है कि कभी अल्लाह अपने दीन का काम फासिकों से भी करा लेता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगर मुसलमान होते हैं, और फिरौन की धमकियाँ और जादूगरों की इस्तकामत आयत 71 से 73 में। पहले लालची थे, तकर्रुब मान रहे थे, इनाम इकराम मान रहे थे, और अब ईमान ले आए कि फिरौन के सारे दावों और उसकी धमकियों के मुकाबले में इस्तकामत को कबूल किया। ये होता है ईमान। जिसको अल्लाह के वजूद का यकीन आ जाता है ना, वो फिर सूली पे चढ़ाए जाने, हाथों के कटाए जाने से भी नहीं डरता। फिर उसके बाद आयत नंबर 74 से 76 में मुजरिमों और मोमिनों का इंजाम बताया जा रहा है। इन्नहुमैयाति रब्बहु मुजरिमा, जो मुजरिम बनकर आए उसका क्या हाल है? जहन्नुम में ला यमूतु फीहा वला यहया, ना जिएगा और ना मरेगा। आप बताइए वो ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है जो मौत से बदतर हो? इसके बरक्स वमैयाति ही मोमिनन, जो ईमान की हालत में आएगा, वक़द अमिल सालेहात, फिर अमल भी अच्छे किए होंगे, फ़ौलाइक लहुमुद दरजातुल उला, उनके लिए बुलंद दर्जे होंगे जन्नतें हमेशगी की। अब मैं और आप सोचें, हम क्रिमिनल बन के जाना चाहते हैं वहाँ, या बिलीवर बन के जाना चाहते हैं? फिर आगे कहानी बढ़ती है तो 77 से 79 में फिरौन और उसके लश्करों की हलाकत का मंजर है। हर फिरौन का बिल आखिर यही अंजाम होगा, और ये अंजाम कितनी जल्दी होगा ये उस दौर के मुसलमान डिसाइड करेंगे। जितना अल्लाह और उसकी किताब से जुड़ेंगे अल्लाह उनके दुश्मनों के मुकाबले में काफ़ी होगा उनको। अब यहाँ किस्सा इनका क्लोज हो रहा है 80 से 82 में, बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की इनामात और फिर इनको शुक्रगुजारी की तलकीन। और मुझे तो ऐसे लगता है कि यहाँ या बनी इसराइल नहीं, या उम्मत मोहम्मद है। और कद अंजई ना कुम मिन अदुविकुम में फिरौन नहीं है, हमें कहा जा रहा है कि तुम्हें भी तो मैंने निजात दी, तुम्हें भी तो सब कुछ दिया, लेकिन तुमने वो हक अदा नहीं किया। सब मुहासवा करें हम अपना, क्या हमने आज़ादी पाकर अल्लाह का हक अदा कर दिया, और क्या आज हम एक शुक्रगुजार कौम है। फिर उसके बाद आयत 83 से 85 में हज़रत मूसा के एक अमल को सामने रखते हुए एक पैगाम है कि उजलत पसंदी मुनासिब नहीं। देखिए सुस्ती और चीज़ है, लेकिन उजलत क्या है कि वक्त से पहले काम कर लिया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अलाजिला तो बिना शैतान, जल्दबाजी चीज़ों को जल्दी से करना, घबरा रहे हैं, कोई टूट रहा है, कोई गिर रहा है, और जितना आप जल्दी करेंगे उतने काम बिगड़ेंगे। सुकून ठहराव होना चाहिए, मोमिन की आवाज़ में, मोमिन के चलने में एक वक़ार होना चाहिए, और इस तरह हर वक़्त ही भाग दौड़। और आप देखिए कि अब दिन ब दिन हर एक भाग रहा है, सड़कों पे रश है, बाजारों में ऐसे है, कितारों में लगे हुए लोग घबरा रहे हैं, जल्दी करें जल्दी। हम तो मस्जिद से निकलते हुए गाड़ी निकालने के लिए भी परेशान हैं। तो हमेशा अपने अंदर ठहराव लाइए। फिर आगे सामरी की पैदा करदा गुमराही का तस्करा है 86 से 90 के अंदर, कि कैसे मूसा तो तौरात लेने तूर पे गए, अल्लाह से कुर्ब ले रहे हैं, और पीछे से एक फितना आ गया। अपनी औलादों के लिए हमेशा फ़िक्र किया करें, ऐसा ना हो कि आप तो पढ़ पढ़ा रही हैं और आपके बच्चे न जाने पीछे से फ़ोन और कंप्यूटर से क्या देख रहे हैं। आप कहेंगे अच्छा फिर मैं ये करना छोड़ दूँ, नहीं, आप घर में रहकर भी नहीं उनको चेस कर सकती। कौन सी माँ जो सारा वक्त बच्चे के सर पर बैठी रहेगी, और बच्चों को आपसे ज़्यादा आता है कंप्यूटर फ़ोन। करें क्या, वही करें जो हज़रत यूसुफ़ के साथ याकूब ने किया था, बच्चों के दिल में तकवा और अल्लाह की मोहब्बत डाल दें। और आगे फिर आयत 99 से 112 में क़यामत की हौलनाकियाँ, जब वो दिन आ जाएगा उस दिन कलेजे हलक में आने लगेंगे, फिर पता चलेगा कि हमने अपनी ज़िंदगी किन कामों में डाल दी थी। और यौम इज़ीं यत्तबियूनद दाई, जब सूर की आवाज़ आएगी ना तो लोग उस वक़्त अपनी कब्रों से ऐसे निकलेंगे, भीगी बिलियाँ बने हुए होंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, हर एक अपने बारे में परेशान होगा। वानतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम, सारी अकड़ी हुई गर्दनें उस दिन रब्बे कायनात के आगे झुक जाएंगी। अल्लाह हमें इस दुनिया में झुका दे। और अब एंड पे 113 में मकसद नज़ूल कुरान है, ये कुरान की उतरा चूमने और चाटने के लिए नहीं, वकज़ालिका अन्ज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, ये अरबी का कुरान हमने क्यों दिया, और इसके अंदर बार बार हम वईद क्यों देते हैं, ताकि डर जाओ। तो आप देखते हैं कभी मूसा का किस्सा सूरत अल-अराफ में आता है, फिर सूरत बकरा में पढ़ा था, फिर आ रहा है, तो बार बार इन चीज़ों को सुनकर अपने लिए अमल लीजिए। और अब आगे नबी की दुआ, यानी बनी इसराइल का किस्सा एक किस्म का क्लोज होता है, और 114 में अल्लाह ताला नबी सल्लम की एक बड़ी प्यारी दुआ सिखाते हैं, और वो क्या है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आप इस पारे का एक अलग से खूबसूरत इम्तियाज लिख लें कि दो दुआएं इल्म से मुतल्लिक हैं, और शुरू में पारे के इल्म की बातें हैं, हज़रत मूसा और खिज़र के नाते से। तो आपको मुझे क्या करना है, इल्म लेना है इंशाअल्लाह ताला। फिर इसके बाद आयत 115 में इंसान के साथ भूल है, यानी भूल इंसानी कमज़ोरी है। आदम अलैहिस्सलाम जो भूल गए थे, वलक़द अहदना इला आदम मिन क़ब्लु फ़नसिया, ये लफ़्ज़ फनासी या हाईलाइट कर लें, आदम ने तुकियानी या सरकशी की वजह से दरख्त का फल नहीं चखा था, भूल गए थे, फॉरगेटनेस थी, वलन नजित लहू अज़्म और अज़्म की कमी थी। फिर आयत 116 से 123 बहुत ज़्यादा इंसान को माइल करती हैं अल्लाह की नाफरमानी से, जो चार मुशक्क़तें दुनिया में इंसान पर आईं उसका तस्करा है इसमें। अल्लाह ताला ने फरिश्तों और आदम के तस्करे और आदम और इबलीस के इस किस्से से जो आपको मुझे सिखा दिया कि जो जितनी नाफरमानियाँ करेगा उतनी तकलीफ़ें दुनिया में सहेगा। बज़ाहर हम नाफरमानी इसलिए करते हैं कि ज़िंदगी आसान हो, नहीं, और सबसे बड़ी बात कि कुरान से गफलत बरतने वाला روزے قیامت اندھا ہوگا. 124 سے 126 میں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, کا جس نے ہماری نصیحت سے اعراض کیا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے. نوٹ کر لیں, ڈپریشن, زندگی میں تنگی, قبر میں تنگی, جان نکلنے میں تنگی, حشر میں تنگی. وَنَخْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَى, اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کھڑا کریں گے. قَالَ رَبِّ لِمَا خَشَرْتَنِي يَعْمَى, وہ کہے گا میرے رب مجھے کیوں اندھا کیا. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, میں تو دیکھتا تھا, میری تو اچھی خاصی نگاہ تھی. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا, کہا جائے گا اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آتی تھی. فَنَسِيتَهَا, پھر تم کو بھول گیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى, آج اسی طرح بلایا جائے گا. کیا پتہ چلا قرآن پڑھ کے بھول جانا بہت بڑا جرم ہے. آیات کو بھلانے کا انجام دنیا میں تنگ زندگی, اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جانا. اللہ ہمیں کبھی بھی ایسے حال میں نہ رکھے. آج آپ کو زندگی میں کوئی کہہ دے کہ آپ 2 سال بعد اندھے ہو جائیں گے, تو یہ 2 سال کیسے گزریں گے, اگلوں کی تو بات چھوڑیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آیتوں کو اچھی طریقے سے اپنی زندگی میں عمل میں ڈھالنے والا بنا دے. اور آگے پھر 127 سے 128 میں حدوں سے نکلنے والوں کا تذکرہ ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ, اسراف کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا, نہ پیسے کا, نہ وقت کا, نہ مال کا. اور خاص طور پہ اللہ نے پچھلی قوموں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ جو دنیا میں بڑی ترقی کرتے تھے لیکن نہیں بچے. دنیا کی ترقی اللہ کی پکڑ سے بچانے والی نہیں. فرعون کا عبرتناک انجام ہوا اور نافرمانی کے ساتھ کوئی بچ نہیں سکا. پھر آگے آیت 129 میں جزائے اعمال کے لیے میعاد مقرر ہے, یعنی اللہ نے ایک مقرر مدت سب کو دی, اچھے کام کر لو یا برے کر لو. اور اس کے بعد پھر آیت 130 سے 132 میں داعی دین کے لیے خوبصورت اصول ہے. صورت بھی پوری ہو رہی ہے, پارا بھی پورا ہو رہا ہے, اور فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, لوگ آپ کو جو باتیں کرتے ہیں نا اس پہ آپ صبر کیجئے, ڈونٹ بی ریئیکشنری, اور صبح و شام اپنے رب کی تعریفیں کریں. اس میں نمازوں کے بھی اوقات ہیں, اور اس میں صبح و شام کی دعاؤں کا بھی اشارہ ہے. اور دنیا کی زندگی جو لوگوں کو چمک دمک دی گئی ہے اس کی طرف نظر نہ اٹھاؤ, یہ بھی بہترین اصول ہے. اور اللہ کے لیے عبادت کے لیے جمعے, اور اپنے گھر والوں کو نیکیوں کی, نمازوں کی دعوت دیتے رہیں. اور پھر 133 سے 135 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن حکیم ہے. اگر آپ پیچھے سے ذرا سا ذہن پہ لائیے نا, تو ہر صورت کے اینڈ پہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. پچھلی کئی صورتوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں, تو کیا پتہ چلا کہ اس قرآن کی قدر کرنی ہے. آپ نے اور میں نے جنت پانا ہو, دنیا میں کامیابیوں کو پانا ہو, اسی کے ساتھ جڑیں. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. آمین.